आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्षी दलों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध अक्षम्य पाप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, काला दिवस के रूप में जाना जाएगा 17 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अप्रैल को हरदोई में प्रस्तावित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया निर्देश। जीरो बैलेंस पर भी जारी रहेगी विद्युत आपूर्ति। और प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा किया गया यह कृत्य न केवल नारी सम्मान के खिलाफ है बल्कि अक्षम्य पाप है, जिसके लिए देश की नारी शक्ति उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र और महिला सम्मान दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह आचरण विपक्ष की नारी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।
पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनका यह कृत्य अक्षम्य है।
लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा सार्थक रही, लेकिन विपक्षी दलों ने बिल का विरोध कर महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाई। इसके लिए 17 अप्रैल काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के नए युग में एक साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बावजूद सनातन आस्था अडिग रही और पुनः अपने स्वाभिमान के शिखर पर स्थापित हो रही है।
ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अपनी गौरवशाली विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के नए युग में प्रवेश किया है। आज का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है, 1000 वर्ष के बाद जब हम देखते हैं तो भारत की सनातन आस्था पूरी मजबूती के साथ दुनिया के अंदर कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन आक्रांताओं का कोई नामो निशान इस धरती पर नहीं बचा हुआ है।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत बलरामपुर और फरुखाबाद सहित प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धालुओं का दल निशुल्क सोमनाथ मंदिर दर्शन यात्रा पर रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अप्रैल को हरदोई में प्रस्तावित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। वर्ष 2020 में मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया गया और रिकॉर्ड समय में इसे साकार करने की दिशा में कार्य हुआ। एक रिपोर्ट।
गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुंडापुर दांदू गांव के पास समाप्त होगा। ये मार्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी हिस्से से जोड़ते हुए प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 प्रमुख जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इन जिलों के 519 गांव इस परियोजना से जुड़े हैं। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक चूक या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनना चाहिए। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां लगभग 45 दिन तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही जीरो बैलेंस पर भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने आज लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 5 स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी। अयोध्या में मां सरयू की आरती को और आकर्षक तथा व्यवस्थित बनाने के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब अयोध्या के सरयू नदी तट पर होने वाली आरती में पुजारी सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण करेंगे। नित्य सरयू आरती संस्था के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आरती को भक्ति के साथ साथ सौंदर्य और सांस्कृतिक अनुभव से भी जोड़ना है, जिससे श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा।
जिस तरह से मठ मंदिरों में भगवान के नित्य प्रत के पोशाक हैं, वस्त्र हैं, उसी तरह से माँ सरयू जी की आरती में भी प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे आज रविवार है, आज सफेद वस्त्र होना चाहिए भगवान, उसी तरह से माँ सरयू जी की वेदी पर और पुजारियों का वस्त्र भी दिन के हिसाब से रखा गया है।
अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। काशी के प्राचीन विष्णु तीर्थ बिंदु माधव मंदिर में भगवान विष्णु की भव्य आरती उतारी गई। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। वहीं अमरोहा में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव ऐतिहासिक वासुदेव तीर्थ स्थल स्थित मंदिर में मनाया गया। पीलीभीत, गोरखपुर, चित्रकूट और फरुखाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इटावा और हमीरपुर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से उत्तराखंड में वार्षिक 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश में लगभग सभी जिलों में लू चलने और दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 क्रॉस कर गया है। यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से अगले 4 दिनों के लिए लू का अलर्ट है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए लू का अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 4-5 दिनों के लिए लू का अलर्ट है और तापमान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 40 के क्रॉस रहेगा। वहीं अगर हम दक्षिणी पार्ट की बात करें तो वहां 43 से 45 के रेंज में तापमान रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो आने वाले अगले 4 से 5 दिन गर्मी का असर उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेगा।
वहीं चंदौली में बढ़ते तापमान के कारण जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच न्यू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्षी दलों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध अक्षम्य पाप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, काला दिवस के रूप में जाना जाएगा 17 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अप्रैल को हरदोई में प्रस्तावित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया निर्देश। जीरो बैलेंस पर भी जारी रहेगी विद्युत आपूर्ति। और प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।